अपने प्यारे बाप दादा से कल बहुत स्नेह से सन्मुख में मिलन मनाया। अनेक वरदानों से हरेक ने झोली भर ली। और बाबा हम सबसे क्या चाहते हैं, किस स्वरूप में हम सबको देखना चाहते हैं, वो भी हम सभी ने बाबा की मुरली से डायरेक्ट सुना। समय की समीपता और बाबा के इशारे हम सबको समान और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष समय अनुसार मिल रहे हैं। आज मुझे कहा गया कि आप एक ऐसे विषय को लें जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन, जिस आधार से हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सहज ही बाप समान बन सकें, वो विषय है अनासक्त कर्म योग। हम सभी ने ये शब्द गीता में पढ़े हैं, जानते हैं। अनासक्त कर्म योग के बारे में भगवान ने कई उपदेश गीता में दिए हैं। हम सभी सच्ची गीता पढ़ने वाले भाई और बहनें, जिनकी जीवन ही कर्मयोगी जीवन है और जिसमें कोई भी प्रकार की इच्छाएं आसक्तियां नहीं हैं, केवल एक बाबा के निमित्त बाबा को सामने रख करके जो भी कर्म हम कर रहे हैं, बाबा ने कहा कि आप सभी ईश्वरीय सेवा पर हो। केवल सेवा पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हो। तो हम सब चाहे लौकिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन हर कार्य करते हुए बुद्धि में है कि बाबा ने इस कार्य के निमित्त बनाया है, बाबा की सेवा के लिए है। कर्म बंधन में न बांधे, ये विशेष ध्यान रख करके कर्म करने की प्रेरणा बाबा हम सबको दे रहे हैं। क्योंकि कर्म के बंधन के फल स्वरूप आत्माएं वर्तमान समय दुख का अनुभव कर रही हैं और इतनी बंधती जा रही हैं, जो हम सभी देख रहे हैं कि कर्म बंधन की रस्सियों ने हर एक को बहुत अच्छी तरह से जकड़ करके रखा है। कर्म ने अनेक बंधन बना दिए हैं और उन बंधनों का परिणाम दुख और अशांति है। बाबा हम सबसे जो कर्म कराना चाहते हैं, वो कर्म संबंध हो जाए, आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाए। आधार कर्मेंद्रियां ही हैं, क्योंकि इन कर्मेंद्रियों के बिना आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकती। लेकिन कर्म करते भी कर्तापन का भान न आए, वो अनासक्त वृत्ति रहे, मैंने किया है मैं करता हूं, ये जो अंदर का मैंपन है, संगम युग पर हम सभी उस मैंपन की रस्सियों से छूट जाएं। बाबा हम सबको इसीलिए विशेष पढ़ा रहे हैं और बाबा की पढ़ाई में बाबा की मुरलियों के आधार से हम सभी यही सीख रहे हैं कि सृष्टि मंच पर जितनी भी आत्माएं आई हैं उन्हें कर्म अवश्य करना ही है। कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। बाबा ने एक शब्द बिल्कुल ही अपनी भाषा से समाप्त किया है कि अगर कोई कहे कि मैं कर्म सन्यासी हूं, बाबा कहता है कर्म सन्यास होता ही नहीं है। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, देखना, सुनना, बोलना। कर्म जब तक इन कर्मेंद्रियों का आधार है आत्मा को करना ही है, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएं, वो कर्म विकर्म न बने, पाप कर्म न बने, उसके लिए हम सभी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम सब ने यही पाठ बाबा से पढ़ा है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कराने वाली करनहार अलग हूं, करावनहार आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करा रही है। एक तरफ बुद्धि में है कि बाबा हमारा करावनहार है और मैं करनहार हूं, लेकिन दूसरी तरफ है कि मैं आत्मा करावनहार हूं और ये कर्म इंद्रियां करनहार हैं। इन कर्म इंद्रियों से मैं आत्मा करा रही हूं। ये बहुत अच्छा अभ्यास मैं समझता हूं, जब से हम सभी बाबा के बच्चे बने हैं हर एक ने ये अभ्यास किया ही है कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। और योग की गहरी बातें, मूल सिद्धांत, अगर हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं तो यही कहते हैं कि योग यथार्थ रूप में उसे ही कहा जाता है जिसमें आत्मा और शरीर, देह और देही अलग अनुभव होने लगे। जैसे बाबा इस देह में प्रवेश करते हैं और कितनी स्नेह से सबको शिक्षाएं देते हैं, पालना करते हैं, दृष्टि देते हैं और एक सेकंड में इस देह से डिटैच हो जाते हैं। दृष्टि देते देते कोई भी प्रकार से ये देह का बंधन, संबंध का बंधन, परिवार का बंधन बाबा को एक सेकंड के लिए भी बांध नहीं सकता। इतना डिटैच है और इतना अटैच भी है, प्यारा भी है। तो अनासक्त कर्मयोगी जीवन की पहली परिभाषा अगर हम सभी अपने बाबा को ही साकार स्वरूप में देखते हैं, कैसे निराकार बाबा और अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों आत्माएं संगम युग पर पार्ट प्ले कर रही हैं इस समय और कर्मेंद्रियों का आधार भी लेती हैं, आती भी हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों का आधार लेते हुए भी कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं बंधती। इतना कर्मातीत स्थिति है, कर्म किया और अलग हो गए। अभी हम सभी ने 84 जन्म इस देह के साथ बिताए हैं और इन कर्मेंद्रियों के इतने अधीन हो गए हैं, जो अगर एक सेकंड भी डिटैच होने का अभ्यास करते हैं तो कई बार, जो कल बाबा ने कहा, मन बड़ा चंचल है, बुद्धि बहुत भटकती है और संस्कार बार बार, पुराने नहीं लेकिन बाबा ने कहा मध्य के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार तो इतने श्रेष्ठ हैं, इतने पवित्र हैं, जिनको हम अनादि संस्कार कहते हैं, जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अनादि और आदि संस्कारों को अगर हम सभी यहां बैठे बैठे कैच करके देखें, कितने अच्छे और श्रेष्ठ संस्कार थे जिनकी यादगार तो आज भी मंदिरों के अंदर देवी और देवताओं के रूप में पूजी जा रही है। उन देवी देवताओं के मंदिरों की पूजा करने वाले उनके चित्रों से, उनकी जड़ मूर्तियों से भी वो वाइब्रेशंस लेते हैं, उनकी मनोवृत्तियां शुद्ध और पवित्र हो जाती हैं। उनको देखने से ही लगता है कि ये हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने अलौकिक और दिव्य थे। उनकी दृष्टि, उनके फेस, उनका हर एक शारीरिक अंग भी खुशबू देने वाला, एक आत्मा को सुख पहुंचाने वाला दिखाई देता है। तो आप हम सभी अपने आदि स्वरूप अथवा अपने अनादि परमधाम के स्वरूप को, उन संस्कारों को इमर्ज करके देखें, कितने श्रेष्ठ और पवित्र थे, कितने शुद्ध थे। लेकिन आत्मा जब इस शरीर के साथ पार्ट प्ले करने लगी, खेल खेलते खेलते सतयुग, त्रेतायुग, आधा कल्प इस देह के साथ न्यारे होकर के पार्ट बजाया, लेकिन धीरे धीरे संग का दोष लगा, इस देह का संग लग गया और आत्मा इन कर्म इंद्रियों के अधीन होने लगी। द्वापर प्रारंभ हुआ और इतना अधीनता आ गई जो भूल गई कि मैं कौन हूं। संगम युग पर ही हम सबको बाबा ने स्मृति दिलाई और कहता है, बच्चे इस थोड़े समय में पुरुषार्थ करके तुम उसी स्टेज को प्राप्त करो। इसलिए कई कहते हैं इसमें मेहनत है, वो मेहनत मोहब्बत से ही समाप्त की जा सकती है। जब बाबा से अटूट प्यार हो जाए, जो बाबा कहता है वही मुझे करना है, और अपने अटेंशन रूपी चौकीदार अगर अलर्ट रहते हैं, बार बार ये स्मृति रहती है कि मैं कौन हूं, और उसको रिवाइज करते हैं। ऐसे नहीं हमने एक बार मुरली सुन ली फिर सारे दिन में इतना हम अपने कार्यों में व्यस्त हो गए जो फुर्सत ही नहीं है पूछने की अपने आप से कि मैं कौन हूं। ये एक बहुत वंडरफुल पहेली है जो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं और लास्ट तक भी पढ़ते रहेंगे। पहला पाठ भी वही है और अंतिम पाठ भी वही है, और वही अभ्यास हम सबको अंतिम संपन्न संपूर्ण स्टेज तक ले जाएगा। शायद बाबा की मुरलियां सुनते, बाबा के सामने बैठते, वो ड्रिल हम सभी करते ही हैं, और जब बाबा कहते हैं तो कुछ समय विशेष अटेंशन भी रखते हैं। पिछले सीजन में बाबा ने हम सबको 5 स्वरूपों की ड्रिल सिखलाई और हम सब ने काफी समय तक, मुझे याद है बाबा ने कहा था, बच्चे 8 बार दिन में कम से कम ये 5 स्वरूपों की ड्रिल जरूर करना, ये होमवर्क करना और इसका चार्ट रखना। रखा था सभी ने, कुछ समय तो चला था, लहर अच्छी थी, क्योंकि जहां भी मुझे जाना हुआ या जिनसे भी मिलना हुआ वो इस विषय को बहुत अच्छी तरह से पूछते थे, कैसे इसका अभ्यास किया जाए और हम कैसे करते हैं। लेकिन धीरे धीरे भूल जाता है, फिर से बाबा को याद दिलाना पड़ता है। तो कल भी बाबा 3 स्वरूपों की स्मृति दिला करके और उस स्वरूप में सबको उड़ा करके ले गए। अभ्यास किया था बाबा की मुरली के साथ साथ, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो, फिर बाबा ने कहा अपने ज्योति स्वरूप अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये ड्रिल बाबा ने कल भी मुरली के बीच में कराई, बोल करके नहीं, लेकिन मुरली चलाते चलाते उसी अभ्यास में फिर कहा कि चलते फिरते बात करते इसका अभ्यास करना, यह शरीरी बनने की ड्रिल अंत समय में बहुत काम आएगी। अगर हम सभी अपनी इन तीनों स्थितियों पर ध्यान दें, हैं तीन स्थितियां ही, एक साकारी, एक आकारी और एक निराकारी। कर्मयोगी जीवन के लिए कर्म करते बीच बीच में इस अभ्यास की जरूरत है। अगर घंटे में, दो घंटे में एक बार भी ये ड्रिल कर ली जाए तो मैं समझता हूं उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, बहुत समय तक रहता है। और समय अनुसार बाप दादा की विशेष प्रेरणा रही है, संदेश के माध्यम से, वर्तमान मुरलियों के माध्यम से, कि बच्चे इस समय आवश्यकता है बैलेंस की। अधिक एक तरफ झुकाव हो जाएगा तो बैलेंस टूट जाएगा। इसलिए जैसे सेवाओं में बहुत रुचि है, बहुत प्यार से, दिल से हम सभी सेवाओं के लिए संकल्प करते हैं और हरेक के अंदर है कि हमने जो कुछ पाया है वो दूसरों को दें। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन भी क्या है, हरेक सेवा तो कर ही रहा है, हरेक कोई रहता ही है कि मैं जितना हो सके बाबा की सेवा करूं। और बाबा ने भी कहा कल कि बाबा का संदेश देना ये सबसे पुण्य का काम है, रहम दिल का काम है, बच्चों को करना ही चाहिए। तो सेवाएं तो हम सबका श्वास है ब्राह्मण जीवन में, लेकिन सेवा करते करते कई बार सेवाएं जब अति के रूप में अधिक हो जाती हैं तो बैलेंस टूटता है स्वस्थिति का। जो कर्मयोगी जीवन का एक सुंदर अनुभव है उससे आत्मा नीचे आ जाती है, मन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। और कारण है वास्तव में कर्म में अनासक्त भाव न होने के कारण। जब कहीं भी कोई छोटी मोटी इच्छाएं रह जाती हैं, चाहे वो बहुत सूक्ष्म रूप में है, दिखाने में हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से रहता है कि कम से कम मैंने इतनी सेवाएं की हैं, लोगों को, हमारे बड़ों को पता तो चलना चाहिए, हमारा नाम तो हो, यज्ञ में पूछा तो जाए, किसी न किसी रूप में मान सान नाम की जो इच्छा रहती है। एक है सेवा के लिए अपनी रिपोर्ट देना, अपने फोटोज देना, उन्हें प्रस्तुत करना, वो भी एक आवश्यक है। लेकिन एक है आंतरिक इच्छा रख करके, एक अंदर से हमारा नाम हो जाएगा, स्थान का नाम हो जाएगा, हम आगे आएंगे, लोग हमें पहचानेंगे। जो एक अंदर का संकल्प सूक्ष्म इच्छाओं का रहता है वो कर्मयोगी जीवन में सुख की अनुभूति करने नहीं देता। इसलिए वर्तमान समय के अनुसार बाबा हम सभी को कहते हैं कर्म का परिणाम तो निश्चित ही है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। गीता में भी कहा है, भले एक ओर भगवान गीता में उपदेश देते हैं कि कर्म फल की इच्छा के बिना तू कर्म करता चल, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। कोई भी कहे कि मैंने किया है, मेरे को कोई इच्छा नहीं, कोई भी कर्म मैं करता हूं मुझे उसकी इच्छा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसका फल निकलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म एक बीज है और बीज जब किसी चीज में, किसी स्थान पर पड़ जाता है, उसमें कोई न कोई प्रकार से जल वायु धरणी का जब संग मिलता है तो उसमें अंकुर निकलते ही हैं। इसलिए कर्म रूपी बीज जब हम इन कर्म इंद्रियों से करते हैं, संकल्प भी रचते हैं, तो उसका भी परिणाम निकलता है। अगर कोई व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी हम देखते हैं कि हमारे मन की स्थिति हलचल में आ जाती है, उसका उसी समय परिणाम निकलता है। और बाबा कुछ समय से इशारा करते आ रहे हैं कि बच्चे बहुत सूक्ष्म कर्म की फिलॉसफी है, अगर तुम बच्चों ने कोई उल्टे संकल्प किए, विकल्प किए, नेगेटिव संकल्प किए, तो उसकी सजा उसी समय मिलती है, आपकी आंतरिक खुशी नष्ट हो जाती है, प्रसन्नता आपकी छिन जाती है, वो अंदर का जो आनंद है उससे आत्मा वंचित हो जाती है। इसलिए बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, समय प्रसमय कहते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों पर पहरे पहरा दो, संकल्प में ही व्यर्थ और नेगेटिव की उत्पत्ति हो और उसे समाप्त करके समर्थ कर दो, परिवर्तन करो, उन संकल्पों के बहाव में बह न जाओ, क्योंकि संकल्प रूपी बीज अगर समर्थ है, शक्तिशाली है, तो उससे दो पत्ते निकलते हैं। जैसा संकल्प हम रचते हैं वैसे ही हमारी वाणी, वैसे ही हमारे बोल निकलते हैं। कई लोग कह देते हैं मैंने सोचा नहीं था, निकल गया। कभी न कभी कोई संकल्प चले होंगे तब ऐसा कोई व्यर्थ बोल निकलता है, कुछ तो सोचा होगा, अचानक कैसे निकलेगा, बीज के बिना फल कैसे आएगा। कोई गुस्सा कर देता है, कोई गाली बोल देता है, कोई कुवचन निकल जाता है, कोई किसी के लिए अपमानजनक शब्द निकल जाते हैं, क्या बिना सोचे ही निकल जाते हैं, अचानक निकल सकते हैं क्या, उसका बीज है ही नहीं अंदर। लेकिन वो समाये हुए बीज को हम कभी कभी भूल जाते हैं कि कभी भी हमने इस आत्मा के अवगुणों पर चिंतन किया है, उसकी कमियों पर कभी विचार किया है, देख लिया है, और वो अंदर चला गया है, चित्त के अंदर चला गया है, और वो अंदर गया हुआ संकल्प जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है, जब वो दिखाई देता है, तो अचानक भी वो बोल निकल सकते हैं। लेकिन बीज जो चित्त में बैठा है, अंदर है संकल्प का, उस पर ध्यान दिया जाए कि ये जो व्यर्थ बीज अंदर पड़ गया, उसका फल बोल के रूप में या कर्म के रूप में निकलना ही है, और बोल और कर्म में आ गया तो उसका परिणाम या वैर विरोध हो जाएगा या कोई पाप हो जाएगा। एक बहुत गहरी फिलॉसफी बाबा ने हम सबको सुनाई है, और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस फिलॉसफी से अवगत हैं, जानकार हैं। कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जो इस कर्म फिलॉसफी को न जानता हो, है कोई ऐसा? सभी जानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये गीता के महावाक्य हैं भगवान के, और वही भगवान पढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी आत्मा कर्म इंद्रियों की इतनी गुलाम हो गई है, इतनी अधीन हो गई है, जो न चाहते कहते हैं हो जाता है, आदतें करा लेती हैं, मन भटक जाता है, मन चंचल है, बुद्धि भटका देती है। अब इस बात को हम सभी ध्यान दें, क्योंकि ब्राह्मण जीवन बाबा कहते हैं मौजों का जीवन है, श्रेष्ठ प्राप्तियों का जीवन है, सुख का जीवन है, और जिस जीवन में डायरेक्ट भगवान से हम सभी पढ़ रहे हों, जिस जीवन में हमारा माता पिता, हमारा शिक्षक, हमारा सतगुरु डायरेक्ट परमात्मा हो, वो श्रेष्ठ जीवन, जिसके लिए कितना बाबा ने कल मुरली चलाई, कितना ऊंचा सम्मान दिया कि बच्चे विचार करो किसके बच्चे हो, कौन पढ़ा रहा है, सिर्फ ये स्मृति रखो मैं किसका हूं तो भी माया से बच जाओगे। सार तो यही था ना, इसेंस मुरली का तो यही था कि अगर इस ऊंचे सम्मान में रहो कि डायरेक्ट परमात्मा का मैं हूं, बच्चा हूं, तो माया से, समस्याओं से, विघ्नों से बच जाओगे। अब ये ऊंचा स्वमान बार बार आत्मा को दिलाना पड़ेगा। हम दूसरी इच्छाएं रखते हैं, मान मिले, शान मिले, महिमा हो, प्रशंसा हो, हमने ये किया है उसे पूछा जाए, लेकिन बाबा हम सबको उधर से मोड़ करके ये स्मृति दिला रहे हैं, ये मान अपना अपने आप को दो, मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, मुझे कौन मिला है। कर्मयोगी जीवन का ये पहला फाउंडेशन है। अगर हम सभी चाहते, सचमुच चाहते हैं हमारी जीवन योगी जीवन बन जाए, योग लगाने वाले नहीं। अभी अभी बाबा का जो संदेश आया था दादी जी के प्रति जब भोग लगा, तो यही विशेष इशारा बाबा ने दिया, इन दादियों को आप सब ने देखा है। आज भी हम सबके बीच से एक दादी चली गई, मालूम है अभी दादियां बहुत फास्ट गति से एडवांस पार्टी में जा रही हैं। हमारी संदेशी दादी को जानते होंगे, शांतामयी दादी जो मधुबन में शांतिवन में रहती हैं, उनकी लौकिक बड़ी छोटी बहन है संदेशी दादी, जो भुवनेश्वर में थी, बहुत बाबा के अंग संग रही हैं। आज 2 बजे बाबा की गोदी में चली गई। बहुत फास्ट गति से आत्माएं एडवांस पार्टी में जा रही हैं। बाबा को अभी क्या सीन नहीं दिखानी है, क्या होना है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है, बाबा ही जानता है। लेकिन ऐसी महान तपस्वी आत्माएं जिन्होंने बाबा के अंग संग इतना जीवन बिताया है, जो तपस्या करके इस यज्ञ को इतना जिन्होंने बढ़ाया है, जो इस आधार, इस यज्ञ की आधार रही हैं, ऐसी आधार मूर्तियां दादी जी के साथ साथ और फास्ट गति से एडवांस पार्टी में जा रही हैं। इन सभी ने अपनी कर्मयोगी जीवन बनाई, योग लगाया नहीं, 1 घंटा 2 घंटा अंग अंग में बाबा बसा हुआ था, हर संकल्प में, हर कर्म में, हर बोल में बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा का है, मेरा कुछ नहीं, बसा हुआ था दिल के अंदर बाबा, यही तो जीवन योगी थी। कभी भी दादी को स्पेशल, ठीक है कोई प्रोग्राम के अनुसार योग कराना है, योग करना वो अलग बात थी, करती थी। हम लोगों के साथ मधुबन में भट्टियों में 2-2 बजे 1-1 बजे हम जगते थे, तो दादी खुद आती थी ड्रिल कराने के लिए, और कई बार हमने दादी जी के साथ रात रात भर भट्टियां की हैं मधुबन में। तो योग किया है ऐसे नहीं, नहीं किया, लेकिन एक जीवन योगी बन गई। जैसे उनकी दृष्टि में बाबा है, हाथों में बाबा है, मुख में बाबा है, हर कर्म में बाबा है, ये कर्म योगी जीवन है। और इतनी अनासक्त वृत्तियां हैं, कोई इच्छा ममता कोई भी प्रकार की आसक्ति से वो कर्म नहीं है, कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। कभी भी कहते हैं दादी आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, बहुत अच्छा पत्र लिखाया, बहुत अच्छा, बोली तुम भूल गया दादी का भगत है क्या, दादी ने कुछ नहीं किया, बाबा ने कराया। इतना निमित्त भाव, इतना ट्रस्टी भाव रहा कि मैं कुछ नहीं करता, बाबा का यज्ञ है, बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, मैंने कहीं नहीं किया। ये कर्मयोगी जीवन का दूसरा फाउंडेशन है। इतना निमित्त भाव से कर्म किया, कभी भी मैंपन को प्रवेश होने नहीं दिया। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं, हिंदी के शब्दों में मैं शब्द का प्रयोग कई बार करना पड़ता है। अगर वहां पर हम शब्द लिखते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, मैं शब्द पर्सनल होता है कि मैंने ये किया, मैं करता। तो दादी जी के पत्रों में मैं लिखता था तो दादी जी कहते हम सब ने, हमने ये किया, हम ये करते हैं। तो दादी हम शब्द सबके लिए आता है, आप मैं शब्द लिखो, मैं शब्द कभी भी मेरे पत्रों में नहीं लिखना। मैं लिखती हूं, मैं कहती हूं, मैंने किया, ये शब्द भी पत्रों के अंदर दादी ने कभी लिखने नहीं दिया। कहती थी भले लिखो, दादी कहती है। हमने कहा दादी कहती है, दादी के पत्रों में क्यों लिखूं? नहीं, मैं कहती हूं नहीं, दादी कहती, जैसे अलग दादी है। इतना मैंपन को समाप्त करके निमित्त रूप में रही, यह है कर्मयोगी जीवन का फाउंडेशन। अनासक्त भाव, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखी, मेरी महिमा हो जाएगी, मैंने अच्छा किया है, इतना एकदम निमित्त होकर के, निर्माण चित्त होकर के, नम्रता का इतना अच्छा व्यवहार किया जो वाणी एक निर्मल और शुद्ध बन गई, सुखदायी बन गई। ये स्लोगन जो हम सब ने पढ़ा है दादी जी का लास्ट में, निमित्त भाव निर्माण भावना और निर्मल वाणी। अगर कोई आत्माएं कर्मयोगी जीवन क्यों नहीं बन पाती, हम सबकी संकल्प तो बीज है, लेकिन संकल्प बीज अगर नेगेटिव है भी, कई बार बाबा कहता है कि बच्चे माया है, युद्ध है, अभी तो पास कोई नहीं हुआ है, व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं, आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्ञानी तो आत्मा समझ से अपने व्यर्थ को कंट्रोल करके, व्यर्थ को अंदर ही अंदर समाप्त कर दे, बोल पर अटेंशन दे, बोल उसके मधुर हो जाएं, मीठे हो जाएं, चुप रहना सीख जाए, कम बोलना सीख जाए, जो अच्छे बोल सुख देने वाले हैं वही बोले, तो मैं समझता हूं जो कल की मुरली का एसेंस दूसरा था, इशारा, दुआएं देते चलो, लेने का शब्द नहीं यूज किया कल बाबा ने, अपने आप मिलेंगी। ये बहुत पहला फाउंडेशन है, बोल से दुआएं लेना। दृष्टि से तो हम लेते ही हैं, लेकिन बोल बोल करके अगर मीठे बोल बोलते हैं, अच्छे शब्द निकलते हैं, किसी के प्रति प्रशंसा के शब्द निकल जाते हैं, दो मीठे बोल बोल दिए, खुश कर दिया आत्मा को, तो आत्मा खुश होकर के दिल से थैंक्स तो दुआएं देती है। लेकिन ये बहुत अटेंशन की बात है, जिनसे स्नेह है, जिनके साथ अच्छा संबंध है, जिनसे कुछ प्राप्तियां होती हैं, उनके प्रति तो अच्छे बोल निकलते हैं, मीठे बोल निकलते हैं, लेकिन जिनसे थोड़ा सा अनबन हो जाए, जो मेरे विरोध में कोई खड़ा हो, या कोई ऐसा मेरे प्रति बोलता हो, सोचता हो, करता हो, जिसके वाइब्रेशन ही ठीक ना आते हो मेरे को, कई बार ऐसा होता है कि बोलता भी नहीं है, लेकिन वो सामने से गुजर जाता है तो उसके वाइब्रेशन अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है मेरे प्रति नेगेटिव भावना रखता है, या इसको बहुत अपना अहम है, इसके चलने से दिखाई देता है, कईयों को होता है, चलने से कईयों की फीलिंग्स में आता है, जैसे हम दादियों के समीप क्यों जाना चाहते हैं, कईयों के समीपता से हम किनारा करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कईयों से कहेंगे इससे हट जाओ, बाहर दूर रहो, ठीक है, कईयों के समीप हम जाना चाहते हैं, उनकी अच्छे फीलिंग्स, अच्छे वाइब्रेशन लेने के लिए। कभी भी दादी बैठी होगी, उनको ऐसे सब सामने पहुंच जाएंगे जैसे कहीं गुड़ पड़ा हो, चीटियां इकट्ठी हो जाएं, ऐसे अगर कोई भी दादियां बैठी होती हैं तो चारों तरफ से भाई बहने घेर लेते हैं, दृष्टि लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अच्छे वाइब्रेशन लेना चाहते हैं, और कई ऐसे बैठे होते हैं जो उनसे दूर करके, किनारा करके, दूर दूर से सामने कहीं दृष्टि भी इसकी न पड़ जाए, कुछ बोल देगी, कुछ कह देगी, कुछ हो जाएगा, मूड खराब ना हो जाए, एक अच्छे वाइब्रेशन कईयों से नहीं आते, और कईयों से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते, फीलिंग्स आती हैं। अब जिनसे अच्छे नहीं आते हैं, उनके प्रति भी हमारी भावनाएं अच्छी बनी रहें, और उनके प्रति भी हमारे बोल कभी भी अशुभ न निकले, ऐसा अटेंशन अगर मेरा है, अगर इतना ध्यान है इस पढ़ाई के ऊपर, ये बहुत गहरी पढ़ाई है, ऐसे ऊपर ऊपर से मुरलियां सुन लिया, बाबा ने तो आत्मा का ज्ञान दे दिया है, पढ़ा दिया है, सब जान गए हैं, ये तो सभी कह देते हैं कि वही मुरलियां तो हैं, रिवाइज ही तो हो रही हैं, बहुत बार हो गई, कईयों को तो याद भी हो गई। एक बहन मुझे मिली, कहने लगी भाई जी इतनी बार मुरलियां हमने पढ़ ली हैं, मुझे तो कंठ हो गई हैं। हमने बहुत अच्छी बात है, एक हो जाता है कंठ हो गई, याद हो गई, और दूसरा हो जाता है उसका स्वरूप बन गए। अगर मैं आत्मा बाबा के महावाक्यों का स्वरूप बन जाऊं तो शायद बाबा पढ़ाई बंद कर दे, पढ़ाना बंद कर दे, क्यों इतना कागजों पर खर्चा करना पड़े, क्यों इतनी सबको मेहनत करनी पड़े, क्यों बाबा को रोज मुरलियां प्रिंट करा के भेजनी पड़े, जरूरत नहीं रही। लेकिन फिर भी बाबा हम सबको कहता है बच्चे रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कोई बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है उसको बार बार रिवाइज कराया जाता है। जब तक मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हूं, मन मनाभाव नहीं हुई हूं, योगी जीवन नहीं बना है, अंदर से आत्मा साक्षी दृष्टा नहीं बनी है। कल बाबा का एक बहुत अच्छा शब्द था कि अगर स्थिति को अच्छा रखना है, समस्याओं को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास करो। मेहनत की बात है, ऐसे कहने वाली बात नहीं है। कोई गलत कर रहा है और मैं साक्षी हो जाऊं, हो रहा है आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, मैं साक्षी हो जाऊं, मेरे संकल्प ही न चले, पत्थर बनना होगा, पत्थर बनना होगा, ध्यान देना आप सभी। नहीं तो कुछ न कुछ गलत लगता है, दिखाई देता है, बुद्धि की आदत बनी है उस पर सोच लेने की, विचार कर ले, सोचते ही नहीं है, जब किसी से मिलेंगे जरूर कुछ न कुछ बोल देंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, जो बाबा ने ना गीत चलता है क्यों क्या कैसे गीत सुनाते हैं बच्चे, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है, कई प्रकार के आत्मा प्रश्नों में उलझ जाती है, वो प्रसन्न चित्त स्थिति में नहीं रह पाती। साक्षी दृष्टा स्थिति प्रसन्न चित्त स्थिति बनाने का आधार है। यदि मैं आत्मा सहनशील बन जाऊं, बिल्कुल सब कुछ देखते सुनते, एक बाबा ही मुझे दिखाई दे, जो बाबा ही संसार, कल बाबा कह रहे थे एक बाबा ही मेरा संसार है, बस मैं बाबा के लिए हूं, बाबा को ही देखना है, बाबा ने जो कहा वही करना है, एक अंदर से एक पक्का हो जाए मुझ आत्मा को कि बस बाबा 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 अंदर चलता रहे, धुन लग जाए, मैं समझता हूं उस साक्षी दृष्टा स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू की स्मृति में हम पक्के हो जाएं, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना विशेष पार्ट बजा रही है, कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, दिखाई कम देती कई बार, अवगुण एक बार पता चल जाते हैं, कमियों का पता चल जाता है, सारी विशेषताएं उसकी लुप्त हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता इसमें कोई विशेषता भी है, क्योंकि अंदर उसकी खामियां हमारे जीवन में हमें याद आ गई, इसने ऐसा किया, एक बार किसी ने कुछ गलत कर लिया है और हमने सुन लिया, देखा भी नहीं, केवल किसी ने मुझे बता दिया कि इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता, ये ऐसा है, हमारा दृष्टिकोण जो परिवर्तन हो जाता है, दृष्टिकोण समझते हैं, देखने का नजरिया, हम किस भावना से उसको देखने लगते हैं, किस रूप में उससे व्यवहार करते हैं, अगर उस बात पर हमारा ध्यान हो जाए। और बाबा हम सबको कहते हैं कि मेरा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, 9 लाख परिवार होने वाला है, बाबा का भी परिवार 9 लाख का होने वाला है, अभी तैयार हो रहा है, अब इस 9 लाख के परिवार में मेरा कोई भी एक बच्चा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता न हो, हर एक आत्मा विशेष है। और बाबा विशेषताएं किस रूप में देखता है वो हम सभी जानते हैं, जानते हैं किस रूप में देखता है, सबसे बड़ी विशेषता देखता है कि इसने भगवान को पहचान लिया है, अपने आप को पहचान लिया है, चाहे छोटा बच्चा, जैसे बाबा कह रहे थे देखो कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, महात्माएं हैं, साइंसदान छोटी सी बिंदु को नहीं जान पाए, ज्योति बिंदु आत्मा को नहीं पहचान पाए, और महात्माएं कहलाने वाले महान आत्माएं जो कहते हैं आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, पवित्र नहीं रह सकते, परमात्मा को मिलना असंभव है, भोली भोली माताएं बाबा की जो बने हैं वो भी कहती मैंने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मेरा हो गया। और हम साथ रह करके, पवित्र रह करके पवित्र दुनिया बनाएंगे, कितनी बड़ी चैलेंज है। अगर आप सभी इस पर विचार करें, बहुत बड़ी चैलेंज है जो बाबा ने इस संगम युग पर अपने बच्चों से कराई है। साथ रह करके, घर ग्रस्त में रह करके हम बिल्कुल पवित्र जीवन जिएंगे, शुद्ध वृत्तियों में जिएंगे। अगर अशुद्धता उसके बीच में आ गई तो योग खंडित हो जाएगा। इसलिए कर्म योगी जीवन के लिए विचारों की शुद्धता, बिल्कुल पवित्रता। अगर मैं आत्मा निरंतर योगी बनना चाहती हूं, कर्म योगी जीवन बनाना चाहती हूं, तो विचार इतने शुद्ध हो जाएं जो देह को देखने की एक आदत बन गई है, नेचुरल आदत बन गई है, ऐसा है इसका फेस, ऐसा है इसका रूप, ऐसा है इसका चलन, ऐसा है इसका उठना बैठना, ऐसा है देह को देखने का, देह भान में आने का एक नेचुरल अभ्यास हो गया है। ये पढ़ाई हमारी है, इस पर हम मेहनत करें, मेहनत करने कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये भी एक चमकता हुआ सितारा है, और ये अगर हमने अभ्यास थोड़ा समय भी कर लिया तो ये जो देह की कर्म इंद्रियां बार बार आत्मा को अपनी ओर खींचती हैं। मैं आपको तीन स्थितियां बताना चाहता हूं कि अगर कर्मयोगी जीवन है तो वो तीन स्थितियां हम सब की होनी चाहिए। एक, बाबा कहता है बच्चे अंतर्मुखी स्थिति बन जाए। ये जो बाह्यमुखता की बातें हैं इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, मैं थोड़े से समय में इसको स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम अंतर्मुखी सदा सुखी जो बाबा कहता है, अंदर ही अंदर आत्मा अपने आप से बातें करना सीख ले, अंदर का जो मन मुख है इतना अंदर अंदर अपने आप को देखे और अंदर ही अंदर अंतर्मुख होकर के अपने आप से बातें करे, अपने बाबा से बातें करे, इसमें बाहर की वाणी बहुत कम हो जाती है। मौनी बाबा बनने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये नहीं सोचे कि हमको शायद मौन ही ले लेना चाहिए, अच्छा है इससे तो ये आर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। मुख को पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, बोलो, लेकिन मन का अंदर से मौन हो, जितना जरूरी है उतने बोल निकले। अंतर मन मौन में है, अधिक उसका अंदर बोल नहीं चल रहे हैं, अंदर बातें नहीं होती हैं, तो अंतर मुक्ता बहुत सुख देती है। कर्मयोगी जीवन तभी हमारा बन सकता है जब मैं आत्मा सारे दिन में बार बार अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करूं और अंदर ही अंदर अपने आप को देखूं और अपने आप से बातें करूं। कितनी बार मैं देखता हूं कि मैं एक चमकता हुआ हीरा हूं, मैं अलग हूं, मैं न्यारा हूं। अंतर्मुखता के साथ साथ अलौकिकता, अलौकिकता शब्द बहुत परिवार के लिए, लोकलाज के लिए बाबा ने संगम पर यूज किया है, क्योंकि लोकलाज जहां पर आती है लोग क्या कहेंगे, लोगों को हम देखते हैं, लोगों को देख करके चलते हैं, बाबा ने जब से ये अलौकिक जन्म दिया है, मैं समझता हूं ये मधुबन घर में वही बाबा के बच्चे आते हैं जो अंदर से पक्का समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। अलौकिक पिता के साथ जिनका अटूट संबंध है, प्यार है, एक है लौकिक नाता, एक है लौकिक पिता, एक है पारलौकिक पिता, ये दो पिता तो हम सबको द्वापर युग से साथ साथ स्मृति में रहे हैं। सत्ययुग में एक पिता, त्रेता तक आत्मा जानती नहीं थी परम पिता को, भूली हुई थी, लेकिन द्वापर शुरू हुआ, दुख शुरू हुआ तो बाबा को याद करना शुरू कर दिया। दो पिता तो हो गए, जब भी दुख की घटना, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान कहना शुरू कर दिया। लेकिन संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें हम सभी को तीसरे पिता का ज्ञान मिला, और उस तीसरे पिता ने हम सबको इतनी अच्छी पालना दी, खुद माता पिता बन करके मां भी बन गया। मां को ये नहीं कहा मां दूसरी है कोई, बोला मैं बड़ी मां हूं, वो बाप है, मैं अगर पिता हूं तो वो दादा है। तो ये पिता जो हमको अलौकिक मिला, अलौकिक पिता मिलते ही जो मेरी लौकिकता थी उसको समाप्त कर दिया। आज तक भी अगर कोई बाबा का बच्चा बन करके, ब्राह्मण बन करके अभी तक भी लौकिक नशे में रहता है, मैं तो ऊंची जाति वाला हूं, ये तो नीच जाति वाला है, मैं तो ब्राह्मण जाति, लौकिक जाति के हिसाब बात कर रहा हूं, मेरा तो बहुत ऊंचा कुल है, ये जो क्लास में बैठा है ना ये ऐसा है, इसको अलग बैठाओ। कई क्लासेस में अभी तक भी ये भेदभाव रहता है, अंदर रहता है, ऊपर ऊपर से भले साथ में बैठते हो, अंदर से रहता है मेरा तो बहुत ऊंचा घराना, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो बनिया, मैं तो ये हूं, मेरा तो बहुत ऊंचा कुल है, बहुत ऊंची जाति है, बहुत बड़ी पोजीशन है, इसके साथ मैं कैसे बैठ सकता हूं। बाबा ने हम सब की लौकिकता को समाप्त किया है। अगर लौकिकता है तो जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते, अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं है तो कर्मयोगी कैसे बनेंगे। इसलिए सभी ध्यान देना कि बाबा का बच्चा बनना माना सूत्र जन्म का समाप्त होना। लौकिक जीवन जो हमको भान में थी, ऐसे नहीं कोई हम उसे छुटकारा पा गए, छूट गए हैं, भले आप समाज में रहो, परिवार में रहो, सबके बीच में रहो, अगर कोई सिख फैमिली वाला है कहे नहीं मैं तो इस सिख फैमिली में मानता ही नहीं हूं, मैं तो ये सब उतार दूं, बाबा कहता है इसको कोई उतारने की जरूरत नहीं है, ये भी मना करता है। ये मनोवृत्तियों के परिवर्तन की पढ़ाई है, स्थूल में रूप में बताने की जरूरत नहीं है। कई बार नहीं बाबा कहता है बच्चे कभी नहीं कहो, हमारी अंदर की पढ़ाई है कि ये बहन है, हम भाई हैं, ऐसे नहीं स्त्री पुरुष साथ में बैठ करके समाज में बोलना शुरू कर दो कि मेरी बहन जी है, बहुत बड़ी डिससर्विस यहां पर होती है। वहां पर व्यवहारिक जीवन अलग है, दिखावा दिखाना पड़ता है, लेकिन अंदर से वृत्तियां हमारी चेंज की है बाबा ने, ऊपर से दिखावे को नहीं चेंज किया है, दिखावा और पहनावा चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं कोई गिरवे वस्त्र पहन लिए है, कोई ड्रेस बदल दी है, सफेद ड्रेस यूनिफॉर्म है, स्कूल के अंदर आते हैं पहनते हैं, कार्य व्यवहार में सब अपनी लौकिक ड्रेस पहनते हैं, लेकिन वो लौकिकता को अलौकिकता में बदला है हमारी वृत्तियों को चेंज करके, हमारी विचारधाराओं में परिवर्तन कर दिया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो मुख वंशावली हूं, मैं तो अलौकिक हूं, मैं तो अलग हूं। जब तक अलौकिक जीवन में ये अंदर भान नहीं आ जाएगा तब तक कर्मयोगी जीवन नहीं बन सकता। बाबा की याद भेदभाव वाली आत्मा में नहीं आ सकती, जब तक ब्राह्मण नहीं तब तक शुद्धता नहीं आ सकती। पवित्रता नहीं आ सकती। और शुद्धता और पवित्रता तो योग का पहला फाउंडेशन है, क्योंकि बाबा की याद उसी मंदिर में रहेगी जहां शुद्धता का दीप जलता होगा। इसलिए शुद्धता आत्मा का पहला, शुद्धता हमारा नियम ही है, और शुद्धता आने का आधार है ब्राह्मण जीवन की स्मृति। अलौकिक हूं, ब्रह्मा की संतान हूं, बाबा ने मुझे एडाप्टेड जन्म दिया है, ये मर्जीवा जीवन है, मैं लौकिक नहीं हूं। न लौकिक की तरह रहना, न लौकिक की तरह चलना, न खाना, न पीना, न पहनना। अंदर की वृत्तियों से चेंज आती है तो व्यवहारिक जीवन भी चेंज दिखाई देता है, लगता है कि हाँ ये अलग है। वो लोग महसूस करने लगते, समाज वाले भी कहते हैं कि भाई ये तो अलग लोग हैं, अलौकिक माना अलग अल्लाह के लोग हैं, न्यारे हैं। तो बाबा ने हम सबको न्यारा बनाया है, लोक लाज से न्यारा किया है, लौकिकता से न्यारा किया है, और जब तक लौकिकता समाप्त नहीं की तब तक हम कर्मयोगी जीवन का सुखद अनुभव नहीं कर सकते। तीसरी एक बात है, व्यक्त में आने की बहुत आदत बनी हुई है। अंतर्मुख होना अलग है, अलौकिक होना अलग है, लेकिन अव्यक्त हो, अव्यक्त स्थिति में आत्मा रहे, जैसे बाबा अव्यक्त है, व्यक्त में आता है, व्यक्त भान ले, शरीर लेता है, प्रवेश करता है, लेकिन अव्यक्त हो जाता है। ऐसे ही हम सभी भी सारे दिन में व्यक्त बातों और व्यक्त वार्तालाप में ना आए। व्यक्त में बहुत आते हैं, कई बार कई स्थानों के समाचार मुझे मिलते हैं, सुनने को सुनता हूं, पढ़ता हूं, इस सेंटर पर, इस घर में, इस स्थान पर ये विघन है। आप सभी इस पर विचार करना जो यहां बैठे हैं, बाबा का स्थान है जहां पर रोज ज्ञान और योग की पढ़ाई हो रही है, जहां पर योगी और पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, बाबा की जहां पर सकाश मिल रही है, जहां पर परमात्मा की हाजिरी है, उस स्थान पर विघ्न क्यों है? समझते हो आप सभी? अगर किसी भी प्रकार का विघ्न है, समस्या है और बार बार आती है, कौन से विघ्न आते हैं? कभी कोई कहता है यहां पर कोई छाया है, कोई कहता है पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ हो गया है, कोई टकराव की बातें हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, आपस में स्नेह नहीं रहता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, बहुत विघ्न। ये यज्ञ के लिए विघ्न है। बाबा तो हम सबको एक स्नेह के सूत्र में बांध करके रखना चाहता है। कल कहा ना, एकता और एका नामी, यही दो चीजें याद रखना। कहता है सुनाऊं सुनाऊं, बाबा को इतना प्यार है, पूछ पूछ के कहता है बच्चे एकता के सूत्र में बंध करके रहो। अनेकता अगर आ गई बुद्धि में, कहीं भी टकराव हो गया, वहां योग कैसे लगेगा, योग का वातावरण कैसे बनेगा? इसलिए बाबा हम सबको कहता बच्चे उसका मूल कारण है, उस पर मैं आपका ध्यान खिंचवाता हूं। किसी भी प्रकार का नेगेटिव टकराव की स्थिति अगर किसी स्थान पर बनती है, किसी स्थान पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार से विघ्न आता है बार बार, तो उसका कारण अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, इस तरह से नहीं देखना कि मैं यहां की देखूं कौन सी समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उसका मूल कारण है व्यक्त बातों की लेन देन, चाहे निमित्त आत्माएं, चाहे वहां आने वाले स्टूडेंट। बाबा की मना है सेवा केंद्र के ऊपर कोई भी कार्य व्यवहार लौकिक नहीं चलना चाहिए। कोई भी स्थान जो हम ज्ञान और योग से सजा के रखते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए, स्थूल बातें नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थान को अगर आप निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, अपने सेवा केंद्र को हो या अपने स्थान को जहां आप रहते हैं, हमेशा उस स्थान को अपने शुद्ध वाइब्रेशन की किरणों से, प्रकाश से चार्ज करो। उसमें चारों ओर अपनी लाइट की किरणें डालो। बाबा एक छोटा मिसाल देते हैं कि जैसे बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, शायद आप लोगों ने बॉर्डर देखे हों। मेरे पास यहां नजदीक में बहुत अच्छा एक बॉर्डर है पाकिस्तान हिंदुस्तान का, एक घंटे के रास्ते पर ही है। मुझे भी एक दिन राखी पर वहां जाने का अवसर मिला था, बॉर्डर देखने में गया तो बॉर्डर मैंने देखा, देख करके बड़ा वंडर लगा। हमने कहा ऐसा बॉर्डर होता है क्या? बहुत बड़ी बड़ी तारे कांटों की लगाई है, और उन कांटों की तारों के साथ साथ जब मैं चलने लगा, बहुत एक डेढ़ किलोमीटर मेरे को चलाया वहां पर, बोला भाई साहब अगर इस कांटों की तार को कोई क्रॉस करना चाहे, मान लो फिर भी दुश्मन आना चाहे, तो बीच बीच में यहां पर करंट छोड़ी जाती है जिससे वो टच करे तो उसको करंट लगे और दूर गिरे जा करके। शत्रु से सुरक्षा के लिए सरकार भी ये नियम बनाती है कि चलो कोई बात नहीं, बार बार कोई आता है, घुसता है चोर या आतंकवादी, तो उसके लिए कांटों की तार लगा दो। और सिर्फ कांटों की तार नहीं लगाओ लेकिन उसमें करंट छोड़ दो, भी समझती है। हम सभी अपने अंदर आतंकवादियों को बार बार घुसा लेते हैं बैठ सके। असुर, विकारी संकल्प, विकारी भावनाएं, भटकती हुई आत्माएं अगर मेरे ऊपर वार कर रही हैं, इसका मतलब है मैंने अपने चारों ओर तार नहीं लगाई है। अपने घर के चारों ओर, अपने स्थान के चारों ओर मैंने तार नहीं बिछाई है। अब उसको घेराव नहीं डाला है शुद्ध संकल्पों का। अगर हम सभी अपने शुद्ध संकल्पों से, योग्य संकल्पों से, व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में रहकर, अव्यक्त भाव में रह करके उस स्थान के ऊपर अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट करें, संगठित रूप में करें, जो दो चार आत्माएं रहती हैं, बाबा कहता बच्चे व्यर्थ को स्टॉप करो। ये संगम युग अभी व्यर्थ से मुक्त होने का है। जहां आपका समय व्यर्थ जा रहा है, जहां आपकी एनर्जी व्यर्थ जा रही है, जहां आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति व्यर्थ जा रही है, उस व्यर्थ को रोको, व्यर्थ नहीं जाने दो। ऐसे ही नहीं बह जाए, देख लिया, सुन लिया, कर लिया, हो गया, कैसे हो गया? टीवी देखा, गंदे चित्र देख लिए, फिर कहते क्या करूं, योग नहीं लगता, मन भटकता है, विचार आते हैं क्यों देखा ऐसी चीज। नियम बना के बाबा ने दिया है बच्चे कोई भी ऐसा साहित्य नहीं पढ़ो, ऐसी चीजें नहीं देखो जो आपके मन के अंदर विकारी शत्रु प्रवेश कर जाए, वही तो आपके लिए आतंकवादी है। कौन है आतंकवादी? व्यर्थ और बुरे विचार, अशुद्ध विचार ब्राह्मण जीवन के अंदर इस मंदिर में प्रवेश हो जाएं, तो इससे बड़ा आतंक और क्या होगा। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे राजयोगी और कर्मयोगी बनना चाहते हैं, निरंतर योगी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी टॉपिक है, अच्छा चिंतन है। हम सब पहरा दें, व्यक्त जहां भी प्रवेश होता हो व्यक्त और व्यर्थ को समाप्त करें। कुछ भी ऐसा नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, नहीं करना है। वो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, वो तीन बंदर नहीं लेकिन पांच बंदर सामने है। देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं और करना भी नहीं। अगर इस व्यक्त को समाप्त कर दो, अव्यक्त स्थिति में रहो, बार बार उसको ध्यान में लाओ कि बाबा ने मुझे अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए कहा है, तो ये अव्यक्त स्थिति से वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो अंतर्मुखी, अव्यक्त और अलौकिक, ये तीन आधार हैं कर्मयोगी बनने के। अगर मैं सदा के लिए अपनी जीवन को योगी बनाना चाहता हूं, चाहते हूं, तो इन तीन बातों को विशेष अंडरलाइन करो और अंडरलाइन करके बार बार उसको रिवाइज करो। सिर्फ नहीं है यहां सुन लिया, सुनना ही नहीं है, लेकिन उसको चिंतन में ला करके प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए, रूप ही हमारा वो हो जाए। जैसे ये रूप हो गया, स्वरूप का अर्थ क्या है? स्व का रूप, आत्मा का जो रूप है वो वही बन जाए, तो हम सभी कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी और अनासक्त योगी। फल अवश्य मिलेगा, फल से कोई छूटेगा नहीं, जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन आसक्तियां क्यों? मैंने ये किया, मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए। बाबा कहता, बच्चे इस जीवन में, इस अंतिम जन्म में जो कुछ करते हो मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो ये बोझ बन जाएगा। इसलिए हम सभी बोझ से अगर हल्का होना चाहते हैं तो बाबा बार बार कहता, मुरलियां चलाता है, बच्चे बोझ मुझे दे दो, और बच्चों ने अपने ऊपर बोझ ले लिया है। तो हम सभी बाबा को बोझ तभी दे सकते हैं जब अंदर से दृढ़ संकल्प कर लें, बाबा मैं आपका हूं, ये जो कुछ है वो सब आपका है, न ये तन मेरा है, न मन मेरा है, न ये धन मेरा है, तेरा है, तेरी अमानत है, उसमें मैं ख्यानत नहीं करूं, उसको मैं व्यर्थ नहीं गवाऊं। तो ऐसी मूल धारणाओं पर अगर हमारा ध्यान है तो मैं समझता हूं हमारी ये जीवन अनासक्त कर्मयोगी जीवन बन जाएगी, और कर्मयोगी जीवन, राजयोगी जीवन, इस जीवन के सुख का, अच्छा आनंद का अनुभव करा सकेगी। तो सभी सुख का, आनंद का इस जीवन में अनुभव करते हुए ब्राह्मण जीवन की खुशियों में रहो, यही बाबा की इच्छा है, बाबा की चाहना है। अभी हमारा विचार है, सारा क्लास इकट्ठा हो गया है, आज का ऐसा दिन है, हमारी बहुत महान आत्मा बाबा की गोद में गई है, दादी सेकंड, जैसे दादी, बड़ी दादी के प्रति हम सभी ने बहुत योग अच्छी तरह से चारों तरफ से किया। दादी संदेशी की कहानी आप सबको दादियां सुनाएंगी, मैं अधिक नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बाबा के अंग संग रहने का बहुत बड़ा भाग्य, और वो भी फ्रेंडशिप का भाग्य। फ्रेंड्स क्या करते हैं? बाबा के साथ चौपड़ खेलने का भाग्य। बाबा जब साकार में थे तो खेल खेलते थे, तो उसमें सबसे नंबर वन संदेशी दादी थी, बाबा के साथ खेलने में नंबर वन थी, और बहुत रमणीक थी, बहुत ट्रांस में जाने का अच्छा अभ्यास। तो ऐसी दादी आज अव्यक्त हुई है, तो हम सभी विशेष 20 मिनट 7:30 बजे तक योग करेंगे, और फिर बड़ी दादी जी का कोई वीडियो बनाया है वो दिखाया जाएगा आपको। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं, और किस संकल्प में बैठेंगे? सबसे पहले कल जो बाबा ने ड्रिल कराई है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो अशरीरी, आज 20 मिनट इस ड्रिल का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो 7:30 बजे तक सभी उसी पावरफुल स्थिति में बैठ करके, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो बीज रूप शरीरी स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति।